वरदान किसको याद है? आज का वरदान क्या था बोलो? बाबा की याद में रहे, मगन रहे, एक रस अवस्था द्वारा साक्षी दृष्टा भव। एक रस अवस्था में रहने वाले साक्षी दृष्टा भव। इसी साक्षी दृष्टा स्थिति को हम कैसे बनाएं, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई और दीदी का लौकिक जन्म उससे एक साल पहले 1935 में आपकी ही मुंबई महानगरी में हुआ। बचपन से ही दीन दुखियों की सेवा करने का संकल्प था, इसलिए मेडिकल पढ़ाई पढ़ी और फिर मेडिकल पढ़ाई पूरी हुई ही थी कि बाबा मिल गए आपको। फिर तो आपने मेडिकल मतलब क्लिनिक भी खोला और बाबा का सेवा केंद्र भी खोला। 65 में क्लिनिक खोला, 62 में ज्ञान में आए, 65 में क्लिनिक खोला, 66 में सेवा केंद्र खोला और दोनों ही प्रकार से मानवता की सेवा में लग गए। और फिर 71 में बाबा ने आपको विदेश यात्रा के लिए चुना। 71 से 78 तक विदेश की धरनी में अलग अलग देशों में आपने सेवाएं दी। आरंभ में तो आप लंदन गए, जो पहला ग्रुप गया था, 5-6 रिप्रेजेंटेटिव थे, उनमें आप भी थे। हम यूं कह सकते हैं कि लंदन की सेवाओं की स्थापना का क्रेडिट आपको जाता है। करीब एक साल रहकर आपने वहां पर सेवाओं को बढ़ाया। फिर तो आप और स्थानों पर भी गए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि बहुत सारे स्थानों पर गए, न्यूजीलैंड, फिजी भी गए। और इस 78 तक ऑस्ट्रेलिया में 75 में गए थे। तो बाद में 78 में आपने डिसाइड किया ऑस्ट्रेलिया को बेस बनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड रहकर 30 वर्षों तक पूरे ऑस्ट्रल एशिया रीजन की, यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन को आपने संभाला और आज भी आप संभाल रहे हैं। आपके दो कंधों पर दो जिम्मेवारियां हैं। एक तो आप एशियन पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं और साथ साथ 2009 में बाबा ने आपके कंधों पर ज्ञानसरोवर एकेडमी की भी जिम्मेवारी रखी। आप ज्ञानसरोवर एकेडमी के भी डायरेक्टर हैं और जैसे जैसे दादियां अव्यक्त हो गई तो आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती चली गई। आप यज्ञ की ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, आईटी विंग की चेयरपर्सन भी हैं। इसके अलावा बहुत ही इनकॉग्निटो रूप से बहुत सारी जिम्मेवारियों को आप संभालते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हल्के, बहुत न्यारे, बहुत प्यारे, जैसा आपका नाम है ऐसे निर्मल पावन वाइब्रेशन फैलाने वाले, जो बाबा आपको टाइटल देते थे निर्मल आश्रम। तो ऐसा निर्मल फरिश्ता आज हमारे बीच में है। हम आपसे सुनेंगे साक्षी दृष्टा स्थिति की गहराई क्या है, कैसे हम उसे बनाएं। आज का सीन भी एक साक्षी होकर देखने का चांस है हमारा कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में, जिनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, फिर भी आप लोगों के लिए समय निकालकर वो ईश्वरीय पालना देने के लिए आते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार आज का सीन कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिकली हमें साक्षी होकर देखना है। तो अभी हम सुनते हैं दीदी से साक्षी दृष्टा स्थिति।
ओम शांति। पहले तो सब मास्क पहन कर बैठे, मास्क गले में रखने के लिए या पर्स में रखने के लिए नहीं होता है, पहनने के लिए। और दूसरा, जो नीचे बैठ सके नीचे बैठे, आगे आवे। प्रश्न उत्तर करेंगे आज थोड़े हैं ना, तो मजा आएंगे प्रश्न उत्तर से। जरा माइक दे दाइनों को। क्यों भाई, तुम नीचे नहीं बैठ सकता है क्या? तुम्हारा फोन दे दो मुझे, यहाँ रख दो। क्लास में फोन चलता है ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम।
तो बहुत सुनहरा अवसर आपको दीदी ने दिया है, बहुत करीब से बैठकर और प्रश्न उत्तर के रूप में, इसको भी एक भाग्य समझे और खुले दिल से दीदी के साथ आप प्रश्न जो पूछना चाहते आएंगे सामने। ये माइक मैं आपको देती हूँ और दीदी से क्वेश्चन करेंगे और दीदी आंसर करेगी।
अच्छा, ड्रामा के ज्ञान से क्या फायदा होता है? ये माइक लो भाई, चलो। ड्रामा के नॉलेज से क्या फायदा होता है? ड्रामा कितने साल का है?
5000।
सत्युग?
1250।
त्रेता?
1250।
द्वापर?
1250।
कलयुग?
1250।
संगम? संगम? The lady, come. You come here. आ गया यहाँ उसके पास में बैठो, तो माइक ले लो उससे और जवाब दो। संगम युग कितने साल का है? संगम युग कितने साल का है? कितने साल से ज्ञान में है?
10 years
एंड यू डोंट नो। अच्छा, कितने बाप हैं?
2।
कौन से?
ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा।
और लौकिक माँ बन गया क्या? लौकिक बाप को बिल्कुल भूल गई, तो कितना हुआ?
पापा
हाँ
3 हो गए।
3। और माँ कितनी है?
2।
कौन सी? कौन सी?
मम्मा
हाँ
जगदम्बा।
मम्मा और जगदम्बा दूसरी है क्या?
नहीं, मतलब मेरी मम्मा
हाँ?
लौकिक मम्मा और जगदम्बा।
लौकिक माँ और
जगदम्बा।
जगदम्बा बस। व्हाट अबाउट यू, कितनी माँ है? 2। माता आप बताओ उसको। 2 फोन।
5।
5।
कौन सी?
ब्रह्मा माँ
हाँ,
जग मम्मा
हाँ,
और लौकिक माँ।
तो 3 हो गई।
और
शिव बाबा
भी माँ,
मात पिता है। तो 4 माँ और 3 बाप याद रहेगा। अच्छा, संगम युग कितने साल का?
100 years।
अच्छा, उनको दो बाजू वाले को। ड्रामा को जानने से क्या फायदा होता है?
ड्रामा को अगर हम जानते हैं तो स्थिति,
थोड़ा ये निकाल के बोलो भले।
स्थिति अच्छी रहती है क्योंकि अगर कोई भी परिस्थिति आती है और ड्रामा की हमें नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंगली हम समझ पाते हैं और स्थिति अच्छी बनी रहती है, डिस्टर्ब नहीं होते हैं।
दूसरा, बस एक ही फायदा। हाँ, उसको दो।
ओम शांति। ड्रामा को जानते हैं तो हम बच्चे नथिंग न्यू का पार्ट बजाते हैं और साक्षी होकर देखते हैं। कोई परिस्थिति आवे तो हम उस पर रिएक्ट नहीं कर पाते, माना मन से डिस्टर्ब नहीं होते। और बाबा ने कहा ना कि कोई भी परिस्थिति मन की स्थिति को हिला नहीं सकती, तो नथिंग न्यू का पार्ट बजाते हैं, हल्का रहते हैं।
और किसी के पास कुछ जवाब है? जवाब है तो बताओ।
ड्रामा के पार्ट से हमें सत्युग की राजधानी मिलती है।
अच्छा,
बाबा हमें ज्ञान जब बताते हैं तो रियलिटी में हम उसको यूज करते तो ज्यादा बॉडी के ऊपर भी और सोल के ऊपर भी इफेक्ट नहीं होता उसका, बाहर की चीजों का।
ड्रामा के ज्ञान से हमें हलचल में नहीं आते, कोई भी परिस्थिति आती है तो हलचल में नहीं आते। और बाबा ने यह पक्का कर दिया है कि ड्रामा कल्याणकारी ही है, तो हमें ही पक्का लगता है कि अकल्याण में भी थोड़ा भी अकल्याण है फिर भी कल्याणकारी तो होगा ही, यह पक्का हो गया है।
ठीक है, ओके। पहले तो ड्रामा जानने से, वैरायटी ड्रामा, अभी पेन लो पहले, बोल दिया ना, वैरायटी ड्रामा, तो इसलिए ये अपेक्षा नहीं रखनी है कि सब एक समान हो, माँ बाप और बच्चे भी अलग, एक बच्चे से दूसरा बच्चा अलग, वैरायटी। इसलिए क्यों क्या प्रश्न न हो कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। दूसरा, ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है किसका? लक्ष्मी नारायण। हीरो हीरोइन का पार्ट है लक्ष्मी नारायण। तो हमको क्या एम रखना है, जैसे लोग क्या करते हैं आज दुनिया में, माता क्यों ये कर लिया? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछती हूँ, मैं ये पूछती हूँ नीचे क्यों कर दिया? एक तो खिड़की के पास बैठी है, पंखे से दूर नहीं है, क्यों मास्क क्यों निकाल देते हैं? तो हीरो हीरोइन को सब फॉलो करते हैं ना, दुनिया में भी देखो क्या करते हैं, हीरो हीरोइन जैसे एक्टिंग करते हैं, उनसे जैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं आदि आदि। तो हमें मालूम है कि लक्ष्मी नारायण का हीरो हीरोइन का पार्ट है, हमें उनको फॉलो करना है, उन जैसा बनना है। फिर ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, एक रस अवस्था रहेंगे। क्यों? सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो इसलिए साक्षी होकर देखेंगे, अवस्था ऊपर नीचे नहीं होंगी। फिर ड्रामा बदलता रहता है ना, एक एक पार्ट बदलता है। तो जो दुख के दिन आएंगे वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, बादल आएंगे बिखर जाएंगे। इसलिए ये नहीं करना चाहिए, क्या हुआ क्यों हुआ, नहीं आया चला जाएगा। और अभी ड्रामा जूम मिसल चलता रहता है, जो भी होता है कल्याणकारी, ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी। इसलिए पास्ट हुआ कुछ भला था, प्रेजेंट हो रहा है भला हो रहा है, फ्यूचर होगा और भी अच्छा होगा। इसलिए न पास्ट का चिंतन करना है न फ्यूचर की चिंता करनी है। और अब ड्रामा पूरा हो रहा है, तो ड्रामा पूरा होता है तो क्या होगा, घर जाना है, ठीक है ना। जब ड्रामा पूरा होता है तो घर जाते हैं एक्टर्स। और ड्रामा में कोई पति है कोई पत्नी है होता है, परंतु ये जानते हैं कि ये तो पार्ट बजा रहे हैं। तो अलग होने से दुख नहीं होता ना। तो यदि ये याद रहे कि हम सब एक्टर्स ड्रामा में पात्र बजा रहे हैं, तो कोई मरता है, कोई अलग हो जाता है, तो हमको मालूम है कि ये क्या है, इनका ड्रामा में पार्ट पूरा हुआ, तो इसलिए दुख नहीं होगा। और अभी घर जाने के लिए तैयार होना है। क्या तैयारी करनी है? घर जाने के लिए कौन सी तैयारी करनी है? हाँ, संपूर्ण बनना है। भाई लोग बहुत जगह है, थोड़ी डिस्टेंस रखो और मास्क पहनो। तो घर जाने के पहले प्योर बनना, देवता बनना है ना, लक्ष्य है देवता बनना है, तो इसलिए दैवी गुण धारण करना है, कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना है। कर्मों का हिसाब किताब कैसे पूरा होगा बहन? हाँ, कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने क्या करना है? उसको मालूम नहीं जवाब है।
अगले जन्म में हिसाब किताब पूरा होगा। अगले जन्म में हिसाब किताब पूरा होगा। हमने अगर
कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए बाप से योग लगाना है। पास्ट विकर्म खत्म करने योग लगाना है और पुण्य का खाता जमा करना है। ठीक है ना? मरने के पहले देखना है कि हमने पुण्य का खाता पूरा जमा किया है। तो ये ड्रामा जो हो रहा है, ड्रामा, तो बाबा कहते हैं किसी को दोष नहीं देना है, ड्रामानुसार सब हो रहा है। अब साक्षी स्थिति बनानी है, लक्ष्य है साक्षी हो के रहना है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने के लिए सदा स्वचिंतन चलता रहे। दूसरा, हरेक के लिए शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है। और व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। चलते फिरते मैं निराकार आत्मा हूं, और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता हूं, ये स्मृति में रहे। और दुनिया में जो कुछ होता है, फरिश्ता क्या करेगा, हमेशा ऊपर होता है ना, ऊपर से साक्षी होकर देखता है। और सहयोग देता है। तो हमारा कर्तव्य है फरिश्ता बन के हर एक को सकाश देना वातावरण को सेफ रखना। तो साक्षी दृष्टा स्थिति के लिए देह से न्यारे होकर कर्म इंद्रियों से कर्म करते स्वयं को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाना है। और हर एक का पाठ देखते रहना है न्यारा होकर। और जितना साक्षी दृष्टा रहेंगे तो हमारी स्थिति पावरफुल रहेंगे। और कोई भी परिस्थिति में हमारी स्थिति डगमग नहीं हो सकती, अचल अडोल रहेंगे। परीक्षा आएंगी, परंतु परीक्षा को खेल समझते हैं। आश्चर्यजनक सीन आएंगी तो उसमें मुरझाएंगे नहीं, तूफानों को तोहफा समझेंगे, गिफ्ट समझेंगे तूफान को। स्वभाव संस्कार के टक्कर होने पे उसको आगे बढ़ने का आधार समझकर माया को परख कर सहज पार कर लेते हैं। जब साक्षी सृष्टि में रहते हैं तो साक्षी रूप में देखकर निर्णय करने में बहुत मजा आता है, भय नहीं लगता। जैसे कि ये सीन हमने अनेक बार देखी है, और वायुमंडल लाइट रहता है, पेपर आएंगे, परंतु पहाड़ समान पेपर को भी राइस समान अनुभव करता है। तो साक्षी दृष्टा के साथ साथ त्रिकाल दर्श बनना है। तो तीनों कालों का जानने वाला और कर्म का भी आदि मध्य अंत को जानने वाला, तो जब दोनों साथ में होंगी त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा तो क्या होगा, हम पूज्य बन जाएंगे भविष्य और अभी भी, और हर एक के सामने एक एग्जाम्पल बन जाएंगे, हमें लोग फॉलो करेंगे। साक्षी दृष्टा बनकर हम कर्म करेंगे ना तो कर्म के बंधन में नहीं आएंगे, कर्म के संबंध में जरूर आएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, संबंध में रहो, प्यारा और न्यारा रहो। तो संबंधियों से न्यारे रहेंगे और बाप के प्यारे रहेंगे। और हम एग्जाम्पल बन जाएंगे और अन्य आत्माएं भी हमको देखकर कर्मयोगी बन जाएंगे, हमको फॉलो करेंगे, कर्मयोगी बन जाएंगे। और बाबा हमेशा कहते हैं साक्षी भी रहो, बाप को साथी भी बनाओ। यदि बाप साथी है और साक्षी है तो कोई भी बात में टेंशन नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं उठेगा। कोई चिंता नहीं रहेंगे। क्योंकि हम रहते हैं कलयुग में, हमारे आसपास कई तमोगुणी आत्माएं होंगी, चाहे घर में चाहे नौकरी धंधे पर। तो उन्हों को भी जब हम साक्षी दृष्टा बनकर देखेंगे कि ये तमोगुणी आत्मा अपना पाठ बजा रही है, तो हम उनके प्रति तिरस्कार या घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, परंतु शुभ कामना से, शुभ भावना से। और उन्हें शांति और शक्ति का दान देंगे। वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हमारे संपर्क में आती है तो हो सकता है कि वो माया का रूप बन जाए ना। तमोगुणी आत्माएं माया का रूप बन जाती है, ये तो अंत तक चलेगा ही, क्योंकि वो तमोगुणी सब तो सतगुणी नहीं बनेंगे। तो उस समय नॉलेजफुल साक्षी बनकर हमें कमल फूल समान सेफ रहना है, पवित्र रहना है और टक्कर में नहीं आना है। जितना साक्षी बनेंगे ना, टक्कर में नहीं आएंगे। सबसे ये साक्षी अवस्था हमको कब मदद करेंगी? अंतिम विनाश लीला के समय। तब यदि साक्षी दृष्टा है तो हलचल में नहीं आएंगे, नहीं तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि हलचल हो जाएंगे ना। तो उस समय देह देह के संबंध, वैभव, प्रकृति कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम उपराम रहकर शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्मा के प्रति दे सकते हैं। वो स्थिति हो और जीवन में तो चढ़ाई उतराई आती है, हार कभी हार है कभी जीत है, कभी कोई मान देता है, कोई अपमान करता है, कोई हंसी उड़ाता है। क्योंकि हमारा जीवन है ना, बिल्कुल न्यारा है, शुरू से ऑपोजिशन होती है। शुरुआत में क्या होता है, अपने घर वाले ही ऑपोजिशन करते, ये क्या, हमारे घर वाले भी कहते थे ये क्या, तुम देवताओं को छोड़कर सीधा निराकार पर चली गई। और कोई कहेंगे आज अभी तक भक्ति करती थी, अभी क्यों नहीं करती है। कोई कहेगा अभी तो तक खाना हमारे हाथ से खाया, अभी हम उनको ढेर भंगी हो गए हैं। तो अनेक प्रकार का सामना होता है। और कई हंसी भी उड़ाते हैं, ये तो ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में आ गई, सन्यासी बन गई। खास यंगस्टर्स है ना, कहेंगे पार्टियां नहीं, फ्रेंड्स नहीं, मूवी में नहीं जाना, ये क्या लाइफ है आप लोगों के। तो सामना होगा, फिर क्या करेंगे, फ्रेंड्स को क्या कहेंगे। फ्रेंड्स को क्या कहेंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगी या नहीं घूमने, नहीं पक्का। इसकी माँ कौन है, माँ है, माँ घूमने गई है क्या, हाँ माँ घूमने गई और बेटी यहाँ बैठी है क्या, हाँ क्यों तुम नहीं गई पीस पार्क, हाँ ये फोन लो माइक्रोफोन। मम्मी कहाँ है,
चार धाम की यात्रा कर रही है शायद।
एक सोफा पर दो ही बैठना, सुनती नहीं है क्या, थोड़ा डिस्टेंस रखो। तो सामना करना पड़ेगा, परंतु उस समय हमारी स्थिति डगमग ना हो, क्योंकि जब निश्चय है मैं जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं मेरे कल्याण के लिए, तो क्या होगा कि फ्रेंड्स क्या भी कहे, कितना भी कहे, हम अचल अडोल रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा संग दोष फ्रेंड्स का, वो फ्रेंड्स का संग दोष से बचना, उसके लिए हमारे में निश्चय चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। तो वो कुछ भी कहे कुछ भी करे उनके ऊपर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम जब लोगों को कहते थे ना कि आप शराब छोड़ो तो आपका टेंशन छूट जाएगा, तो कहते थे मेडिटेशन नहीं करना है हमको, शराब से ठीक है चाहे चाहे। तो अपनी आदत नहीं छोड़ना चाहते लोग। तो क्या है कि संग दोष एक बहुत खराब चीज है। संग दोष के कारण कईयों ने ज्ञान छोड़ा। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में तो खास लोग आए ज्ञान में, क्योंकि अपने मित्र संबंधी ज्ञान में थे। यहाँ फैमिली के कारण ज्ञान में आते हैं ना, कि माँ बाप आते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। वहाँ बच्चे आए, पर जैसे भी टीनेजर बने तो संग दोष में चले गए। इतने तक के हमारे पास एक बारी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में 12-13 पांडव भवन शक्ति भवन थे। अभी मुश्किल एक है। क्या होता था कि फ्रेंड्स सब आए, साथ में रहे। ज्ञान के पहले उन्होंने क्या किया था, सबने सब टेस्ट किया था, शराब, सिगरेट, मरवाना, मतलब गांजा, चरस, सब, हीरोइन, कोकेन, ड्रग्स सब ट्राई किया था। खास मरवाना, गांजा नहीं कहते, गांजा हमारे साधु संन्यासी भी गांजा करते हैं ना। तो ज्ञान में आया, 4-5 साल तो बाबा की मदद रही तो ठीक चलते रहे। और फिर इन्होंने, एक ने शुरू किया तो दूसरों को भी लत लगी, और एक साथ फिर ओम शांति सब चले गए। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं संग का ख्याल रखना है, पढ़ाई जरूर करनी है। पढ़ाई करेंगे, योग लगाएंगे तो ताकत मिलेंगे। मेन बात यह है, पढ़ाई और योग, सत्संग तारे, कुसंग बोड़े। इसलिए जो भी आसपास वाले, घर वाले जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि आप में से कितने हैं जिनका सारा परिवार ज्ञान में है, थोड़े हैं 4-5 जिनका पूरा परिवार ज्ञान में है। तो नेचुरली है अज्ञानियों के साथ रहना पड़ता है, और अज्ञानी तो अज्ञानी ही है, उनके बोल चाल चलन सब कुछ अलग है। तो उसका पाठ देखते रहना है, और साक्षी बनकर देखेंगे ना तो अपसेट नहीं होंगे, असर नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, असर हो जाता है, ये क्या है, ऐसे कैसे है, ऐसे हो जाता है ना। तो ये देखना है, किसी से नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं, एक का पाठ साक्षी बनकर देखते रहो, और शुभ भावना रखो। ये है, चाहे क्योंकि कई मेजोरिटी तो हमारे ज्ञान में माताएं हैं, पति जरूर विरोध करेगा पवित्रता पर, और पति का विरोध होगा एक तो पवित्रता पर, और दूसरा खान पान, घूमना, मूवी, हर बात पर विरोध होगा। तो ये देखना है कि हमें डरना नहीं है, ना उसके प्रति गुस्सा हो, भले कितना भी गुस्सा करे, हमें शांत रहना, उसके पार्ट को देखते रहना है। जैसे देखो ड्रामा में कोई खून भी कर लेता है तो क्या होता है, हम थोड़ी नफरत करते हैं या वैर भाव रखते हैं, देखते रहते हैं ड्रामा को। ऐसे हर एक के पार्ट को इस बेहद के ड्रामा में देखते रहो और हम उसमें जरा भी नेगेटिव भाव ना हो, ये ध्यान में रखना है। कोई भी नेगेटिव भाव, न डर है, न चिंता है, न टेंशन है, न घृणा है, शुभ भावना, शुभ काम, तो धीरे धीरे बदलते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बम्बई में एक माता थी, उसका पति मेरे साथ लड़ने आया, कौन से शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो संस्कृत का स्कॉलर था, संस्कृत में बात कर सकता था, कौन से शास्त्र में लिखा है, मेरी पत्नी को आने नहीं दो। मैंने कहा भाई ये मंदिर है, मंदिर में हम नाम नहीं कहेंगे, कोई नहीं आवे, आपको अपनी पत्नी को नहीं आने देना है तो नहीं आने दो, मुझे क्यों कहते हो। तो दो चार बारी अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, एक बार तो रात को 10 बजे निकाल दिया, अभी रात को 10 बजे काम जाएंगी माता, और वो भी नाइट ड्रेस में थी, कहाँ जाएंगे, तो वो छत पर बैठ गई। और सवेरे जब दूध वाला आया तो उसको खोलना पड़ा घर, तो खोला तब माता घर में गई। अब वो भाई ज्ञान में, उसकी बेटी भी समर्पित है सेंटर पर, तो क्या है कि जितना ज्ञान योग में हम पक्के हैं ना, निश्चय पक्का है, हिम्मत है, तो नियमों पर चलना भी सहज हो जाएगा। और जब घर वाले देखेंगे ये हटने वाली नहीं है तो फिर आकर छोड़ देते हैं। तो इसलिए बाबा को देखना है कि बाबा को देखना है, ड्रामा पर चल डोल रहना है, बस देखते रहो ड्रामा को। और क्या कल्याण है वो देखते रहो। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा,
इतना है प्यारा।
बहुत ही अच्छी से साक्षी दृष्टा स्थिति का पाठ पढ़ाया। दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।